अब एक सवाल पैदा होता है कि आखिर फिर लोग शहवत की हदों से आगे जाकर हराम शहवत में क्यों पड़ते हैं। जैसे अभी यही बात की जा रही है ना, मिसाल है कि बिजनेस की बात है, एक मर्द है कपड़े का काम करता है। देखिए हमारे बाप दादा भी यही काम करते थे ना, सच बताइए। आज से 20-25 साल पहले के किसी बुजुर्ग का नाम ले, अपनी दुकान के बाहर लड़कियों की तस्वीरें या स्टैचूस लगाता, वो तो मेरा ख्याल है कि उसको तोड़ के फेंक देता। स्टैचूज है, पूरी पूरी औरत है अंदर, जिस्म सारे अज़ा बने हुए हैं, और ये सिर्फ औरतों तक नहीं रह गया, मर्दों के भी हैं। अब मुझे बताइए कि आखिर क्यों। कपड़े पहले भी बिकते थे, दर्जी पहले भी थे, ज्वेलर पहले भी थे, आज खुद लोग अपनी ज्वेलर्स के पास जाकर फिल्मों के ऐड देते हैं, फुलां में जो हीरोइन ने पहना है वो कर लो। मुझे खुद किसी सिस्टर ने बताया, अमेरिका में रहती थी तो बेटे की शादी थी क्या, तो कहती कि बहन को कहा है कपड़े बना दो, तो वो क्या कहती है, अच्छा डिज़ाइन भेज दो। पहले क्या होता था, कह दिया बना दो, अब वो फिल्में फलां इधर फिल्में देख रही हैं, फिर वो बाबा जी बुजुर्ग इतनी दाढ़ी वाला बाबा है और उसको जाके कह रही हैं फलां फिल्म देखो, उसमें हीरोइन ने जो ड्रेस पहना है ना वो मेरी बहन के बहू का बना दो। तो अब वो बाबा जी को फिल्म पे लगा दिए ना अपने, वो कहेंगे अब कारोबार करना है, जोड़ा बनाना है, 2-3 लाख रुपए कमाने हैं। तो ये क्या हुआ, आखिर इसकी वजह क्या है। अब हम असबाब पे चलते हैं और इंशाल्लाह आज सिर्फ हम असबाब ही देखेंगे। पहला सबब ईमान की कमजोरी है। जब इंसान का ईमान कमजोर होता है ना, तो आप बिल्कुल ऐसे ही कह लें कि एक सिपाही और उसके पास असलहा ही कोई नहीं। मोमिन का असल असलहा ईमान होता है, यही वो मजबूत कला है जिसके अंदर आप ना ले जाएंगे तो जिल्लत के घड़ों में गिरने से बच जाएंगे। जितना इंसान नेकी के कामों से दूर होता है उतना उसका ईमान कमज़ोर होता है, उतना वो नाफरमानियों में पड़ने लगता है, और उसके बाद नतीजा क्या निकलता है, तीन बातें, तीन उंगलियों पे लिख लीजिएगा, उलमा ने तीन निशानियां दी हैं। किन की? जिसमें ये निशानियां देख लो वो मुत्तकी है, उसमें तकवा है, और अगर इनमें ऐसा नहीं है तो वो शहवत में पड़ा हुआ है। पहली चीज़ क्या है, कुदरत होने के बावजूद, यानी ताकत है गुनाह करने की, कुदरत होने के बावजूद हराम शहवत को तर्क कर दे। बड़ी बात है। किफल का वाक्या आपने सुना होगा, किस तरह एक औरत उसके बिल्कुल पास थी और वो काबू पा चुका था उस पर, लेकिन उसने कहा कि या किफल इत्तकिल्ला, ए किफल अल्लाह से डर जा, उस मोहर को ना तोड़ जिसको अल्लाह ने जोड़ा हुआ है। तो उसने सिर्फ अल्लाह के खौफ से उसको छोड़ दिया। उसी रात किफल का इंतकाल हो गया। अपने वक्त का बदमाश शख्स था, लोगों के दिलों में आया कि अच्छा जी ये तो बड़ा ही कोई बुरा शख्स है, मरा है, आओ देखते हैं किधर गया, क्योंकि उस दौर में फितरतन पता चल जाता था कौन जन्नत में गया कौन जहन्नम में। लेकिन जब लोग उसके हुजरे के पास गए तो वहाँ लिखा था कद गफर अल्लाहु किफला, अल्लाह ने किफल को माफ़ किया। और सहाबी कहते हैं मैंने 60 से ज़ायद बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या सुना। क्या हुआ, कुदरत थी, हराम को रोक दिया। हराम की तरफ जा सकते थे लेकिन नहीं गए, ये पहली अलामत है इस बात की कि इंसान अल्हम्दुलिल्लाह अहले तकवा है और शहवत पे काबू पा चुका। दूसरी बात क्या है कि नफ्स नहीं मान रहा, नफरत कर रहा है, भाग रहा है, इसके बावजूद भी नेक अमल को पूरा करना है। आप देखिए नेकी का शुरू करना क्या है, मसा आपने कहा कि मैं कुरान सीखती हूँ, अब 2-4 दफ़ा गए दिल थक गया, आज क्या जाना, आज थक गए बोझ जाइए, नहीं उठो जाना, यानी दिल ना भी चाहे नेकी करने को और अगर फिर भी बंदा नेकी करे तो इसका अंत है कि वो मुत्तकी है। ये आप अपने ऊपर देखें, हमने कितनी नेकियां शुरू की आज तक, कितने अच्छे काम शुरू किए, किसी को सदका देना शुरू कर दिया फिर रोक दिया, कोई अच्छी काम किया शुरू किया थोड़ा सा किया रोक दिया, किसी की टेक केयर शुरू की थोड़े देर के बाद, नहीं जी अब हमसे नहीं होती। तो तकवा की अलामत क्या है कि बंदा किसी भी नेकी को छोड़ता नहीं है चाहे नफ्स उस पर बोझल पड़े। आपने कई दफ़ा नियत की होगी पीर और जुमेरात का रोज़ा रखूँगी, आप थोड़े दिन रखा फिर छोड़ दिया, ये मसले की बात है। तीसरी अलामत क्या है मुत्तकी की, कि अमानतों का वापस कर देना हालांकि इसे इनकी ज़रूरत हो, किसी से कोई चीज़ ली ज़रूरत है इस्तेमाल करने की, लेकिन ये सोच के कि ख़राब ना हो जाए या पता नहीं इसकी हक तलफी ना हो जाए अगले को वापस कर दी। फरमाया अगर ये तीन बातें ऐसी हैं तो मान लीजिए कि ऐसे शख्स के दिल में ईमान भी है, तकवा भी है, और ऐसा शख्स दीनदार है। हराम सामने आया, अल्लाह की रज़ा के लिए तर्क कर दिया। दूसरी बात, नफ्स को ज़बरदस्ती नेकी और इताअत के कामों में सर्व किया। देखिए नेकी का काम आराम से नहीं होता, हर एक को पता है, आप सब दिन रात नेकियां करते होंगे, नफ्स पे पत्थर रखने पड़ते हैं, कभी जुदाई के, कभी हिजरतों के, कभी कुर्बानियों के, कभी भूख के, कभी बेआरामी के, कभी सफ़र के, ये नेकियां ऐसे तो नहीं होती। किसका दिल नहीं करता अपनी जगह बैठ जाए, मुझे बताइए, किसको अपना घर प्यारा नहीं लगता। आज अमूमन हम अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में इतने खोए होते हैं कि हमें कोई एक से दूसरी बार किसी जगह सिर्फ ये दावत दे देना, आके बैठ के सुन लो, और अमूमन बाद में चाय की प्याली मिल ही जाती है। कोई ये नहीं कि वहाँ जाके अगला कहता है हमारे बर्तन धो के जाओ और हमारी सफाई करके जाओ, लेकिन फिर भी कितने लोग हैं जो सिर्फ सुनने के लिए आने को तैयार होते हैं। कहाँ अल्लाह आपको तौफीक दे दे कि आप लोगों को बताने वाले बन जाएं। तो नफ्स पे काबू पाना पड़ता है, अपने आप पे चेक करें। देखिए, मज़े की नेकियाँ बड़ी अच्छी होती हैं, वो कहते हैं ना कि मीठी मीठी सुन्नत है, वो तो सारे बड़ी निभाएंगे। हलवा खाने की सुन्नत किसको नहीं बुरी लगती, बट बुरी लगती है कि दांत तोड़ने की। वैस करनी के बारे में आता है कि जब उनको पता चला था कि अल्लाह के नबी का दांत टूट गया गज़वे खंदक के अंदर, तो उन्होंने अपना दांत तोड़ लिया कि जब नबी के मुंह में यहाँ दांत नहीं रहा तो मैं भी नहीं रखता। और वो टूटे हुए दांत के साथ जब मुस्कुराते थे तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगते थे। मैं नहीं कहती कि हम सब दांत तोड़ लें। आज हुब्बे नबी के कितने दावे हैं, जश्न आमद रसूल कितना कुछ है, लेकिन उसी नबी के तौर तरीके, उनकी ज़िंदगी, जीना मरना, शादी ब्याह खुशी, क्या हमारी ज़िंदगी में है? तो इसको हम अपने ऊपर लें। तो पहला सबब जिसकी वजह से बंदा हराम लज्जत शहवत में पड़ता है, लज्जत में पड़ता है, वो क्या है कि बंदे के अंदर ईमान की कमी होती है। और ईमान की मौजूदगी की तीन दलाइल आपको बताए कि इंसान बोझ पड़ता भी हो फिर भी नेकी को रखे सामने, सामने हराम चीज़ मौजूद है आंखें फेर ले, और अमानतों को वापस कर दे। आज बैठकर अगर मैं और आप इस चीज़ को देखें तो इंशाल्लाह हमें फ़ायदा होगा। दूसरा बहुत बड़ा सबब जिसकी वजह से इंसान हलाल शहवत से निकल कर हराम शहवत में पड़ता है, ये बुरे साथी हैं, बैड कंपनी। बुरी सोहबत नहीं अच्छी होती। नबी सल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा से रिवायत है, अर रजुलु अला दीनी खलीली ही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। फलयंजुर अहदुकुम, फिर तुम में से हर एक देख ले क्या कि मैं यो खालिल, किसको खलील बनाते हो। आप देखिए, कई लोग अच्छे अच्छे होते हैं, एकदम बिगड़ जाते हैं। आप कहते हैं मेरा बेटा पहले बड़ा अच्छा था, बिगड़ गया, पहले नमाजी था। आप चेक कीजिए, ज़रूर उसकी दोस्ती किसी से बुरी होगी। और आज तो अल्लाह माफ़ करे, नेट चैटिंग और फ्रेंडशिप के लिए आप देखिए, कोई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करें सही, सबसे पहले आपको दावत देंगे। फेसबुक क्या है, बहुत प्यारी चीज़ है, लेकिन आज बुरी दोस्तियों के जाल इससे कैसे फैले, कहानियाँ आपने मुझसे ज़्यादा पढ़ी होंगी। आपस में अफेयर चल रहा था कुछ महीने तक, कहा आज मिल ही लें, जब मिले जाकर दोनों थे वो भाई और बहन थे। ये वाक़यात ऐसे आपने भी सुने होंगे, कोई किसी की आईडी से आ जाए, लड़की लड़का बन जाए, लड़का लड़की बन जाए, पता ही नहीं। और सबसे बड़ी मैंने जो लोगों को रोते देखा है कि जब रिश्ते करते हैं अपने इन चीज़ों पे, यानी अभी चंद दिन पहले कुछ सुना रहा था कि नेट से रिश्ता तय हुआ, दोस्ती हुई, जब आपस में लड़की लड़का खुद जो इन्वॉल्व हो गए तो फिर तो मोहब्बत भी हो जाती है, सीधी सी बात है। वो एक जैसा है, कहते सब कुछ तय हो गया, जब लड़का शादी करने के लिए आया तो उसके बाजू छोटे थे, यानी हाफ बाजू आगे से था, आधा नहीं था। अब क्या करें, माँ बाप परेशान है, अब उस वक्त क्या करें, घर बारात आई है, कहा चलो करते हैं शादी की, कुछ अरसे तक रहे, कुछ वीज़े शीज़े का प्रोसेस पूरा हुआ, तलाक ले ली। अब मुझे आप बताइए, ये चीज़ अगर आम हालात में होती, और ऐसे हमें एक रिवर्ट थी, यानी सिस्टर थी बहुत अच्छी हमारे पास अमेरिका में, तो काम करती थी, वो बेचारी कुफर छोड़ के इस्लाम पे आई हुई थी, लेकिन उसने मुसलमान मर्द से शादी करनी थी, और वो तस्वीर जब भेजते करते और जब सामने आए तो वो शायद 10-15 साल पुरानी तस्वीर दिखा रहा था, वो बुज़ुर्ग था, बाल्ड था, और उम्र का कितना फ़र्क है। अब आप बताइए कि ऐसी दोस्तियाँ के इंसान को फिर ख़राबी पर नहीं ले आती। और ऐसे वाक्य को भी जानती हूँ कि एक हाफिज़ बच्चा कैसे जॉब लेस हुआ, और उसने शो बिजनेस में आकर मसवरी और ये पिक्चर मेकिंग बनाई, तो उसे एक ऐसी औरत ज़िंदगी में आ गई जिसने उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। तो चाहे मर्द औरत की दोस्ती हो या मर्द मर्द की हो, दोस्ती के नाम पे हो, याद रखिए बहुत सारे गुनाहों का पहला सबब दोस्त होते हैं। कई लड़के कहते हैं पहला सिगरेट का सूटा जो था वो दोस्त ने लगवाया था, पहली प्लकिंग दोस्त सहेली ने कराई थी। एक हमारी साथी है तो वो जब उनकी छीन पे बहुत से बाल आए तो कहती मुझे वो अपनी स्कूल की दोस्त नहीं भूलती जिसने पहली दफ़ा मेरे ट्वीज़र के साथ बाल निकाला था। अब वो क्या हुआ, सारे चेहरे पे बाल आ गए। तो ये सिर्फ मिसालें हैं। आप देखिए कि एक 17 साल यानी 17 ईयर्स की नौजवान किस तरह से वो अपने गुनाहों की ज़िंदगी में मुलव्वस होने का वाक़या सुनाते हैं। कहता है कि मैंने पहली बार एक गलत फिल्म देखी, हराम फिल्म देखी, जब मैं अपने एक दोस्त के साथ मिलने गया और हम दोनों एक में, दोस्त ने वो फिल्म लगाई, वो दिन मेरी ज़िंदगी का पहला दिन था। उसके बाद मुझे खुद ही इतनी चस्का बढ़ गया कि आप मुझे चैन नहीं आता जब तक कि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं देख लेता। अल्लाह सुबहान तआला ने बेहूदगी को हराम करार दिया, फहाशी से मना किया। सूरह निसा आयत 148 में आता है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सुई इल्ला मन जुलिम। अल्लाह को ये पसंद ही नहीं कि बुरी बातों का तस्करा किया जाए, हाँ मगर वो शख्स जिस पे जुल्म हो। वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, अल्लाह ताला सुनने वाला भी और जानने वाला है। तो अपनी दोस्तियों को हम खुद पहचानें। फिर आप देखिए कि दोस्त बंदे को बेबाक कर देते हैं। अक्सर लोगों को देखिए अपनी सहेलियों में बैठ के बदतमीज़ी से बोलना, गालियाँ देना, यार कहना और इस तरह की ख़राब चीज़ों में आना, तो ये दोस्तियों में आ जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मोमिन ना तो ताने देता है, ना लान तान करता है, ना फाहिश होता है, ना बेहुदा को। इन चार चीज़ों को हम अपने ऊपर देखें। क्या मैं ताने देती हूँ? देखिए जो ताना देगा ना वो मोमिन नहीं है। और आप कहते हैं तान का लफ्ज़ अरबी में क्या है? तीर मारना। किसी को तीर मारने से ज़्यादा ये चीज़ नुकसानदेह होती है कि आप उसको ताना दें। आपको कोई ताना दे तो आपके सर से पाँव में आग नहीं लगती, अगले को भी लग सकती है। आपको क्या मिला? मिसाल है कि आपने किसी को, शौहर को ताना दिया, शौहर ने बीवी को दिया, तेरे माँ बाप कुछ तेरा ख्याल नहीं करते, तुझे हेस नहीं लाई, सास ने कह दिया तुमने मुझे जेवर नहीं दिया, दामाद कहता मैं गया मेरी इज्जत नहीं की। मुझे बताइए क्या हम सिर्फ इंसानों के अंदर जीने के लिए आए हैं? इससे ज़्यादा तो बद अख्लाक कोई शख्स हो ही नहीं सकता। कभी किसी को ताना ना दें। आज अगर मैं और आप अपने ईमान का इम्तिहान लें, अगर ईमान है ताना नहीं देंगे आप। और तानों से आपको पता है कि हम अगले के दिल में अपनी नफरत लाते हैं। अच्छा, कई लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें और ख़ुद दिन रात उनको ताने देते हैं। फिर कहते हैं अच्छा जी तुम तो मेरे से प्यार ही नहीं करती या करता। तो दूसरी चीज़ लान तान करना। क्या आपने, मैंने कभी किसी पर लानत की? आपको पता है एक सहाबी थे तो अपने दौर में तो हवा ही, चादर उनकी उड़ गई तो उसने हवा पे लानत कर दी। हवा पे लानत हो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो लानत करता है वो उस बंदे पे जाती है, मतलब उसने हवा पे भेजी। अब वो इस काबिल नहीं थी कि उस पे लानत, तो फरमाया वहाँ से पलट कर कहने वाले पे आती है। कोई बुरा जुमला आप और मैं किसी को बोलते हैं, वो मेरे सामने है या वो मेरे पास नहीं है, मेरे मुँह से वो जुमला निकलेगा, उस तक जाएगा, अल्लाह जैसे ले जाए। अब वो इस काबिल नहीं था, आपको गलती लगी, आपका ख्याल है उसने आप पे जुल्म किया, उसने नहीं किया, आपको लगता है उसने ज्यादती की है, अब वो इस काबिल नहीं। फरमाया वो दो में से एक पे ज़रूर पड़ेगी। हदीस है जब भी कोई लानत का लफ्ज़ मुँह से निकालता है वो दो में से एक पे ज़रूर पड़ती है, या कहने वाले पे या जिस पे कही। वाकई आपने लानत डाली और वो इस काबिल ही था ना तो पड़ गई, लेकिन अगर ना हुआ इस काबिल तो फिर आपके ऊपर वो लानत पड़ेगी। तो अपने बोलों की हिफाजत करनी चाहिए। फिर इसी तरह फाहिश, फहश मजाक करना। आप देखिए ना कई लोगों को आदत होती गंदे लतीफ़े, इसी में बेहुदा गोई भी होती है। वल्गर टॉकिंग, लड़की से शादी के बाद उसकी बातें पूछना, दूल्हा से शादी के बाद पूछना, बेकार बातें हैं। आप देखिए कि ये वो चीज़ें हैं कि जो शहवतों की आग को भड़काते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए गंदी मूवीज़ देखना, वल्गर जैसे जोक्स के नाम पे मज़ाहिया ड्रामे देखना और तमस्खुर, और एक अजीब सी मुझे तो वो थर्ड क्लासनेस लगती है। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। फिर तीसरी बहुत बड़ी वजह शहवत के अंदर पड़ने की होती है बद नज़री, नज़रें मिलती हैं। हदीस में आता है कि नज़र शैतान के तीरों में से एक तीर है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इससे मना किया है। क्यों? सूरत नूर आयत 30 में फरमाया कि कुल लिल मोमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, मर्दों को कहा अपनी नज़रें झुकाओ, व यख्फज़ु फुरूजहुम, और अपनी नज़रों की हिफाजत करो, ज़ालिका अज़्का लहुम, ये उनके लिए पाकी है, अच्छा तरीका है। इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यसनऊन, अल्लाह खूब जानता है जो वो करते हैं। अब ज़रा सा आप इस पर लीजिए, आज मैं किसी पे क्यास नहीं करती, फीस ज़माना जो हालात है उसको देखिए, शादियों में, दावतों में, ख़ानदान की गैदरिंग्स में कितने लड़के लड़कियों की नज़रें एक दूसरे से मैच होती हैं। अब देखिए कि एक हया होती थी, एक दौर था, लोग नज़र उठा के नहीं देखते, मंगनी हो जानी तो उस घर में जाना छोड़ देना, कहाँ क्या बात करनी। शादी के बाद कितना अरसा तक सिर्फ एक दूसरे के सामने नहीं लोग आते थे या बातचीत नहीं ज़्यादा करते थे, आज ये नज़रों का तीर कितना आम हो गया। और ये कहाँ से शुरू हुआ? बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे घर बैठ के घंटों हीरोइनों को दिखाया। तो आप बताइए अगर हीरोइन देख ली तो कज़न को देख लिया तो क्या हो गया? रिमार्क्स देना, कोई भाभी पे कह रहा है भाभी बड़ी अच्छी लग रही है, और कोई देवर को कह रहा है, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है, इससे शहवत भड़कती है। आज आप देखिए कि महरमों के अंदर जिना की आवाज़ें आने लग गई, ये आज घर घर की बच्चियों पे क्यों आवाज़ें उठ रही हैं, कभी आपने सुना? एक माँ भी तो देखे ना कि मेरी बच्ची क्या पहनती है, उसके जिस्म पे कपड़े कैसे हैं, क्या वो दूसरों की नज़रों में शहवत तो नहीं भड़का रही? ये एक बहुत बड़ा सबब है, नोट कीजिए, कि औरत का भन ठन के सामने आना। देखिए ना, एक भूखा शख्स है और आप उसके सामने खुशबूदार खाना रख दें, एक शख्स पहले से कितने दिन का भूखा है और आप उसके सामने गरम गरम खाना और जिसमें से लज्जत भी आ रही है, किसी ने कई दिन से मीठी नहीं खाया और आप उसके सामने शरीनी रख दें, फिर वो क्या करे? हर चीज़ तो हमारी आज शहवत को भड़का रही है। ड्राइवर बाबे, माली बाबे, बाहर लड़के जितने एड्स देखते होंगे, और बेगमात और उनकी बेटियों को इधर से उधर छोड़ते लेते, उनके कपड़े उनको देख करके उनमें शहवत नहीं आएगी? तो फिर वो कहीं ना कहीं तो उसका वो बाल निकलेगा ना। हम औरतों को इसके अंदर, अब जो मर्जी पहने, आप सर से पांव तक अपने आप को सजा लें, इस्लाम कभी बुरा नहीं कहता। मसला यह कि एक गैर मर्द की नजरानगाहों में आ गए, ये शहवत को भड़का रहे हैं। अच्छा हुआ क्या, हम कहते नहीं, हम नहीं करते, पर्दा ही नहीं करते तो हम बनते नहीं, तो हम अपने मर्दों के लिए फिर मनहूस हो गए, फिर हम उनके जज्बात को मारने का जरिया बने। आप देखिए कि इस्लाम का मिजाज है, चीज़ वहाँ दिखाओ जहाँ से फ़ायदा होना है। हर मर्द के दिल में औरत की मोहब्बत होती है। अब एक नेक मर्द है, नज़रें झुकाता है, तो क्या फ़र्ज़ नहीं बनता उसकी बीवी का कि वो खुद अपने आप को साफ़ सुथरा रखे ताकि उसकी नज़रें उधर ही उठें? जब अपनी बीवी इतनी बदमिजाज और इतनी तलख है, तो फिर अल्लाह ना करे कहीं ना कहीं बाहर तो चल पड़ेगा। फिर एक चौथा सबब होता है शहवत में पढ़ने का, फारिग वक्त, फरागत। ये भी मैं बहुत दुख के साथ कहती हूँ कि आज हमारे अपने मुल्कों में फरागत बहुत है, बच्चे बड़े औरतें, क्योंकि माशाल्लाह मदद मौजूद है, मेड्स मौजूद हैं, खिदमतगार मौजूद हैं, काम घर में होते हैं, एक इशारा करे 10 लोग आके आपका काम करते हैं। अब जब फरागत हुई, हराम चीज़ों की तरफ तवज्जो जाती, फिल्म देख लूँ, फिल्म देखी, उसमें कोई फैशन दिख गया, चलो बाज़ार जाते, बाज़ार में उसको देने लग गए। आप देखिए कि जब हम अपने नफ्स को इताअत के कामों में नहीं लगाते, तो ज़रूर वो नाफरमानी के कामों में लगेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इब्ने अब्बास की रिवायत है, आपने फरमाया कि दो नेमतें, नेमतान के लफ्ज़ हैं हदीस में, कैसी हैं? मग़बूनुन फ़ीहिमा, जिनके बारे में लोग धोखे में हैं। गबन का लफ्ज़ सुना होगा ना, वही अरबी में हदीस, मग़बून, गबन में पड़े हुए हैं, धोखे में, कसीरों में नन्नास, और वो कौन सी चीज़ें हैं? अस्सेहतु वल फराग, सेहत और फरागत। आज मैं और आप सेहतमंद है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर यहाँ सर में दर्द हो रही होती तो हम बात करते या सुनते? नहीं सुन सकते थे। फिर दूसरी चीज़ देखिए, फारिग वक्त है, यकीन करें आपको नहीं अंदाज़ा होता होगा, मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि पाकिस्तानी औरत के पास बहुत वक्त है, फरागत है, आपको अंदाज़ा नहीं होता। बर्तन कोई और धो रहा है, सफाई को और दूसरी कर रही है, स्त्री को तीसरी करेगी, घर की झाड़ पोंछ कोई और करेगा, ओवरऑल कामों के लिए एक लड़का लड़की रखी हुई है, माली बाबा अलग है, फिर इसी तरह आप ड्राइवर देखिए, आप सिर्फ इनसे काम करने कराने में थक जाते हैं, और बाज़ घरों में किचन का काम भी लड़कियाँ करती हैं। हमारा वक्त किधर जा रहा है? फारिग वक्त इतनी बड़ी मुसीबत है, अगर इसको मुफीद काम में ना लगाए ना, तो ये ज़रूर किसी गलत काम पे ले जाएगी। मसलन आप देखिए कि चूल्हा है, उस पर आप पतीली रखें, उस पतीली में कुछ डाल के पकाएंगे तो वो चीज़ पकेगी ना, और अगर खाली पतीली चूल्हे पर रख दें तो पतीली जलेगी। हमारा वक्त बिल्कुल इसी तरह से है, तो इसके लिए कोई फारिग ना रहे। ठीक है, जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चियाँ, लड़कियाँ, बच्चे हैं, उनको तो उन्होंने मसरूफ़ किया हुआ है, अब ये करना है वो करना है, लेकिन आप अपने आप को खुद देखें। देखिए आप फारिगुल बाल हैं, छोटे बच्चे घर में नहीं हैं, मैं मानती हूँ छोटे बच्चों की माएँ बहुत बिजी होती हैं, ये एक अलग बहस है कि आज हमने बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को भी अपने हथेली का छाला बना लिया है, बच्चे ऐसे नहीं पलते थे जैसे आज पलते हैं, इसीलिए तो वो फिर हमारी सुनते ही नहीं है। 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे थे, हमारी नानी खुद सुनाती हैं, छोटे से बच्चे को नहला दुला के उसके हाथों में किसी तरह फीडर थमा के लटाते थे, काम में लग जाते थे, जिधर बच्चे को लटाना वो लेटा होता तो आके थोड़ी देर बाद साइड पर लट जानी। आज आप कर सकते हैं?
आज तो बच्चे ऐसे लेटते नहीं,
उसकी वजह यह कि उनको हमने एक्स्ट्रा तवज्जो दी, सीधे बच्चे थे, घर की चीज़ें खाते थे, अब वो जो अंदर की चीज़ें जाती हैं वही बहुत सारी हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इंसान के अंदर इन सारी चीज़ों को लेकर आते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक और बहुत बड़ा सबब जो है वो क्या है जिससे इंसान के अंदर शहवत आती है, कि औरतों की तरफ देखना, یعنی جس کو نظر بازی کہہ سکتے ہیں کہ غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا اس کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. بس آپ دیکھیں نا کہ ماں بہن بیٹی جو خون کے رشتے ہیں, حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم, چوتھے پارے کے بالکل آخر میں ایک لسٹ ہے, ان کے لیے بھی اللہ نے ایک حد رکھی ہے. یعنی جس نظر سے آپ بیوی کو دیکھ سکتے ہیں نا, بہن کو نہیں دیکھ سکتے. ماں کے ساتھ اتنی قربت جو ہو سکتی ہے تو وہ بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. کہاں بالکل غیر عورتیں. اب آپ خود اپنے اوپر لیں, ہم ماشاءاللہ خاندانی لوگ ہیں, برادریوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. کوئی غیر محرم مرد جب ہمارے گھر آتا ہے, کیا ہم اس کی طرف یا وہ ہماری طرف دیکھے تو ہمیں برا لگتا ہے؟ نہیں, یہ تو میرا کزن ہے, یہ ماموں کا بیٹا ہے, یہ پھپھو کا بیٹا ہے, یہ میرا بھتیجا, یہ تو بچہ تھا جب میں آئی تھی, یہ تو میرا دیور ہے, یہ تو نند کا بچہ ہے, یہ تو میرے بچوں جیسے. دیکھیے اسلام بہت بے باک ہے, صحابہ سے زیادہ دلوں میں ایمان کسی کے نہیں تھا. اور حضرت انس 10 سال کی عمر کے بچے بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے تھے, آپ کے ازواج میں گھومتے پھرتے تھے, لیکن جوں ہی پردے کی آیتیں اتری حضرت زینب کے نکاح کے موقع پہ, وہ کہہ رہے ہیں میں حسب عادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کے حجرے میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ آگے پردہ گرا دیا گیا. قرآن کی آیتیں ہو گئیں کہ اگر کچھ چاہیے تو تم سوال کرو ان سے حجاب کے پیچھے سے. کہا پریشان ہو گیا, کیا ہوا؟ انس پردے کی آیتیں آگے, اب تم کھلے عام میری بیویوں کے سامنے نہیں جا سکتے. کون تھی پردے کے ایک طرف؟ امہات المومنین, جن پر ساری دنیا کے مردوں کا نکاح حرام ہے. نوٹ کریں, اگر انس کہنے والے ہوتے یا ازواج ہوتی کہ بھئی انس تو گھر کا بچہ ہے, اور وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو میری ماں ہے, وہ نہیں بولی آج میرے آپ کے عمر میں چھوٹا عمر میں بڑا گھر کا بچہ اتنا سا تھا تو میں آئی تھی تو میں نے اس کو نہلایا دھلایا تھا, آج تو نہیں آپ نہلا دھلا سکتے, نے اس کو کھانا سکھایا لیکن آج تو نہیں آپ کر سکتے. لیکن آج دیکھیں تو یہ چیز بالکل عام سمجھ لی گئی. بس صبح میں دیکھتے ہو غیر محرم عورتیں سروں پہ پیار دیتی, اب وہ کون ہے؟ نند کا بیٹا ہے. بھئی آپ کا وہ محرم نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ہم اتنے بڑے, اور آپ کا تک غیر مرد کو ہاتھ ٹچ کر دینا جلتے انگارے کے چھونے کے برابر ہے, کیا ان چیزوں کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے آج ہمارے گھروں میں؟ چوڑیاں پہن رہے ہیں تو مردوں سے ہاتھ پہنا رہے ہیں, آپ دیکھیں ڈرائیوروں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتے ہیں لڑکیوں کو, ادھر لے جا ادھر جا. ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ان چیزوں سے پھر بہت زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور بہت بڑی وجہ کیا ہے شہوت میں پڑھنے کی حرام دریے سے, کہ بہت زیادہ ماحول ہی شہوت والا ہے. مثلا آپ اس میں یہ دیکھیے کہ وہ چیزیں جن کو دیکھنے سے جذبات بھڑکتے ہیں آج دیکھی جاتی ہیں, فلمیں دیکھ لیجئے, گانے سن لیجئے, آپ دیکھیے اس سے دل میں جذبے بھڑکتے ہیں, شادیوں کی ویڈیوز, اور سب سے بڑھ کے جو اس میں میں ایک تکلیف دہ چیز کہوں گی, کپڑے ایسے پہنوانا اپنی بچیوں کو. اب سب اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے کنواری بچیوں کو اچھے کپڑے نہیں تھے پہنائے جاتے. کبھی کوئی ساڑی پہن سکتا تھا؟ یہ شادی شدہ پہنتی ہیں. میک اپ کرتی تھی بچیاں؟ کبھی شادیوں والے کپڑے نہیں. ماں کا چھوٹا کپڑا بہن اور بہن کا چھوٹا چھوٹی, 6-6 دفعہ ایک ایک جوڑا چلتا تھا, اور لڑکی کو ذرا سا کسی طرح بنے ٹھنے دیکھنا وہیں سے بھیجنا, چلو جاؤ منہ دھو کے آؤ, چلو ایسے نہیں کر. اب ہوتا کیا تھا, جب لڑکیاں سیدھی سادھی خراب, کوئی نیا جوڑا گھر میں آنا مانے گا نا بیٹی میں ڈال دو, یہ جہیز میں جائے گا, سب کے جہیز ایسے ہی بنے ہوئے ہیں, ایسے ہی تھا نا. اب کیا ہوا, 12 سال کی بچی, جتنا مہنگا جوڑا ماں کا ہے نا, میں یقین سے کہہ سکتی ہوں بچیوں کے بھی اتنے ہی مہنگے, اور اللہ معاف کرے ماؤں کو ڈیزائنرز نے لوٹا تو آپ دیکھیے کہ بچیوں کے کپڑے آج اتنا, سال سال کی بچی کا 2-2-3-3 ہزار روپے کا جوڑا, ایک گز کپڑا نہیں اس پہ ہوتا, اور اس کی قیمت آپ دیکھیں کئی کئی ہزار ہے. یہ فلانی مائن اور یہ فلانی اور یہ بچوں کے ایک نکلبز بن گئے. اب ہوا کیا سمجھیے گا, جب بچیوں نے اتنے بھڑکیلے کپڑے پہنے, جب گھاگرے چولیاں پہنی, جب انہوں نے فٹڈ کپڑے پہنے, جذبے نہیں آئیں گے. اب جذبے کا اظہار تو آگے ہے ہی کوئی نہیں, شادی تو آپ نے بھی کرنی کوئی نہیں, نہ اس کی کرنی جو لڑکے اس کو دیکھ رہے ہیں ان کی نہیں کرنی, اس کا نقصان کیا ہوگا, پھر کہیں نہ کہیں سے وہ لیکیج تو ہو ہی جاتا ہے. آپ دیکھیے جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سے رگ پھٹ جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے, نظریں کھلی ہوئی ہیں, چمک دمک بہت ہے. کریں لڑکیاں اپنے گھروں میں جا کر کریں, اپنی جیسے عورتوں میں اگر ایک خاص حد تک ہیں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بڑھتی ہے. اور پھر آخر میں ایک اور چیز دیکھیں, گانے, موسیقی, فلمیں, وہ جگہیں, ریسٹورانٹ دیکھیے, کھیل کے میدان دیکھیے. آج صرف ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیں, یقین کریں رات جاتے انسان آنکھیں تو نہیں بند کرتا نا, نظر پڑتی ہے. میں صرف ایڈورٹائزمنٹس کو دیکھ کر سوچتی ہوں یہ ہمارے ملک کے ایڈورٹائزمنٹس ہیں, कभी इंडियन मूवीज के गंदे सीन भी ऐसे गंदे नहीं होते थे जितनी आज हमारी एडवर्टाइजमेंट। आप सिर्फ एड्स देखे, मैं कल लाहौर से इधर आई हूँ सियालकोट और कल से मैं इधर हूँ, रोज ही ट्रैवलिंग होती है, बिलीव मी मैं आपको बता नहीं सकती। दुकानें जो होती है ना उनके बाहर साइन बोर्ड्स थे और उन साइन बोर्ड्स पे जो पिक्चर्स थी, इतनी आम दुकान, कोई ये नहीं कि कोई बहुत बड़े मॉल्स हैं, कोई किसी चीज़ की, और उस पे जो औरत का हाल हुलिया था, ये मैं सोचती थी अगर मुझे कोई एक दिन के लिए इजाज़त दे तो मैं क्या करूँ। मुझे बताइए कि एक मुसलमान मुल्क की किसी आम पब्लिक प्लेस जिसके नीचे ड्राइवरों की गाड़ियाँ सारा दिन खड़ी रहनी है, मोची नाई बैठे हुए हैं, वहाँ मर्द अपने कामों के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर एक औरत स्लीवलेस में बैठी है, फजूल कपड़े पहन के बैठी है, क्या एक मुसलमान मुल्क को ये सजता? नहीं सजता। तो आपको मुझे इन सारी चीज़ों को देखना है। याद रखिए कि ये मुल्क हमने छोड़ के जाना है, ये दुनिया छोड़ के जानी है, हमारे पीछे जो नस्लें आ रही हैं ना वो हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। हमने बुराई का जो मेयार कायम कर दिया है इसने दिन ब दिन बिगड़ना है। आपके लिए जो चीज़ आज बुरी है ना कल आपके बच्चों के लिए बुरी नहीं रहेगी। जैसे आज जो चीज़ आपको बुरी नहीं लगती वो आपके माँ बाप को बहुत बुरी लगती थी। तो जितनी बात आज हुई है इसका खुलासा ले लीजिए कि शहवत यानी लज्जत ख्वाहिश अच्छी चीज़ है, अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम चलाना है, हलाल से लीजिए खुशी। देखिए वही काम अपनी बीवी से करें तो इबादत। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी इसका अजर क्यों है? कहा अगर हराम से पे करोगे तो गुनाह नहीं होगा। अब एक मर्द अपनी बीवी से मोहब्बत भरी निगाह डाले, उससे बात करे, उसको आई लव यू कह दे तो इबादत। अब वही लफ्ज़ आप गली गली फिरते हैं। और इसमें एक बात ना कहूँ तो शायद हक अदा ना हो, आज हमने जो गैर मुस्लिमों के त्यौहार मनाने शुरू कर दिए, जिस तपाक से मेरा गुमान है पिछले साल की पिक्चर्स देखने के बाद 15 फरवरी को या 14 फरवरी को वैलेंटाइन आपके मुल्क में मनाया गया, ऐसे अमेरिका में भी नहीं मनाया जाता। मुझे अल्लाह ने शायद हर घर का पानी इसलिए पिलाया, मैंने अमेरिका में भी 14 फरवरी देखी, मैंने कनाडा में कभी देखी होगी, फ्रांस में देखी, ओस्लो में कह लीजिए, लंदन में भी 1-2 साल आया मुझे, मैंने वहाँ इतना अहतमाम नहीं देखा। हेलोवीन अभी आपकी साल की भी हमारी स्टूडेंट है, मैं उस दिन यूएस उधर थी ओस्लो में, तो मुझे अपना फेसबुक खोल के कहती हूँ उस्ताज़ा सिर्फ ये देखें, यकीन करें आपके लाहौर के बड़े बड़े या छोटे कह लें बड़े बने हुए रेस्टोरेंट्स की जो कैफियत थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई नाइट क्लब ना हो। अंधेरी लाइटें सुर्ख पीली, अंदर कहीं चुड़ैलें बनी हुई, और जो लोग अंदर आ रहे हैं तो मैं हैरान, मैंने कहा ये लाइव है? कहती ये लाइव फेसबुक पे दिखा रहे हैं, कोई होटल नहीं खाली इस वक्त, कोई रेस्टोरेंट नहीं खाली, और बड़ीज बन बन के लोग जाकर वहाँ ये मना रहे हैं। मुझे बताइए फिर हमारे बच्चों ने अगर जिना नहीं करना तो किसने करना है? वो गोरे हैं ना, अगर वो जिना के असबाब बनाते हैं तो वो जिना भी आम करते हैं, कर लो कोई बात नहीं। आज हम फिर दबाते हैं, फिर उसका कहीं ना कहीं असर निकलता है। तो अपने घरों को पाक रखना है, नज़रों को पाक रखना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक इसको बढ़ाएंगे, इसका इलाज क्या है, इसके क्या असबाब हैं, और कम अज़ कम इस कायनात में अपना ये हिस्सा तो हम डाल कर जाएँ कि एक पाक माशरा कायम करें, हमारे बच्चे जिस माशरे में सांस लें उनको लज्जत आए, उनको वहाँ जाकर ये ना लगे कि हम पता नहीं किन मुश्किलों में पड़ गए हैं और हमारे माँ बाप कैसे थे। पहले देखिए आज सिर्फ 4 साल पहले सीधे माहौल थे, खराबियाँ कोई नहीं होती थी। अब चूँकि दो चीज़ों को जमा किया ना, गर्म और ठंडे को, तो उसका नुकसान हुआ। तो बहरहाल मेरा तो ख्याल है आज इतना काफ़ी है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين ثم آمين.